नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
श्री गिरिराज गोवर्धन की जय हो। आप में से कितने लोग गोवर्धन में पहली बार आए हैं? हरे कृष्णा, जय हो, जय श्री गिरिराज। गिरिराज गोवर्धन भगवान के महान भक्त हैं। सब लोग बैठे ना पीछे। गिरिराज का जो जन्म है वो हिमालय में हुआ था। गिरिराज के पिताजी का नाम है द्रोणगिरी, द्रोण पर्वत, और कुलत्स्य मुनि वहां पर पहुंच गए थे। वो काशी से गए थे और काशी में कोई पर्वत नहीं है, तो उन्होंने देखा कि गोवर्धन जी बहुत सुंदर हैं, उसके अंदर जल भी है, उसके अंदर पेड़ भी है, बहुत अच्छी घास है, जड़ी बूटियां हैं, रत्न हैं, झरना है, नदी है, सरोवर है, सब कुछ है और भजन के लिए बहुत अनुकूल है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इस पर्वत को काशी में लेके जाएंगे और वहां उस पर बैठ के भजन करेंगे। तो द्रोणगिरी से बताते हैं वो कि आपका जो पुत्र है गोवर्धन, उसको हम ले जाएंगे। तो तुरंत गोवर्धन तैयार हो जाता है, लेकिन पिताजी बेहोश होकर गिर जाते हैं ये सोचकर कि हमारा बालक अभी चला जाएगा। लेकिन साधु की बात कैसे नहीं मानेंगे, साधु ने अगर रिक्वेस्ट किया है तो वो मानना ही पड़ेगा। इसलिए होश में आते हैं और हां कह देते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन कहते हैं कि एक शर्त पर हम आएंगे, अगर हम को आप उठाएंगे तो कहीं पर नीचे रखेंगे नहीं, जब तक आपको कहीं भी जाना है वहां तक। कहीं भी आप नीचे रख देंगे तो हम वहीं रह जाएंगे, उसके आगे नहीं चढ़ेंगे। बोलो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से गिरि गोवर्धन को उठाकर पुलत्स्य मुनि चले। उस समय गोवर्धन बहुत 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 बड़े थे, कम से कम 16 योजन आकाश में थे। मतलब कितना होता है, एक योजन 8 मील का होता है, तो 16 योजन कितना हो गया, 128 मील। 128 मील मतलब कम से कम 160 किलोमीटर, इतना आकाश में थे वो, उतना ही घेर था उनका बहुत बड़ा। और उस पर्वत को पुलत्स्य मुनि ने बहुत आसानी से उठाया। वो तो भगवान भी नहीं है, तो भगवान के एक अंश है, एक पार्ट है भगवान की। तो मैंने समझा ना आपको कि कैसे अणु हैं हम लोग, वैसे ही वो भगवान के हमारे जैसे तुम्हारे जैसे अंश हैं। लेकिन योग सिद्धि करके आदमी बल प्राप्त कर सकता है और पर्वत को भी उठा सकता है। आपने सुना होगा रावण ने भी कैलाश को उठाया था। कितने लोगों को पता है कि रावण ने कैलाश को उठाया था? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सबने तपस्या किया था। उस जमाने में राक्षस भी तपस्या करते थे, आजकल कोई तपस्या नहीं करता है, भक्त भी नहीं करता है। तो कलयुग की तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। और तपस्या क्या है उसके अंदर, उस पर ध्यान रखना, ये तपस्या है, बाकी तपस्या कोई नहीं है। अगर आप ये तपस्या कर पाए तो सब कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो पुलत्स्य मुनि उसको लेकर चले और जब चल के जा रहे थे तो ब्रज में आए। वो वहां से जा रहे थे काशी। जैसे ही ब्रज आया तो गिरिराज गोवर्धन को यह पता चला कि यहीं पर मेरे स्वामी आने वाले हैं। ये सत्ययुग की बात है, और सत्ययुग समाप्त होना है, सत्ययुग के बाद में त्रेतायुग आना है, प्रभु रामचंद्र की लीला होनी है, उसके बाद में द्वापर युग को आना है, द्वापर के अंत में लास्ट 100-125 साल में भगवान आएंगे, लीला करेंगे। लेकिन फिर भी वो व्याकुल है बहुत कि मैं वहीं जाके बसना चाहता हूं जहां पर मेरे ठाकुर जी आएंगे विदा करने के लिए। तो वो यहां पर जब आए तब उनको गिरिराज की भक्ति के प्रभाव से बहुत जोर से लघु शंका का वेग आया। इन इंग्लिश, व्हेन ही केम टू ब्रजभूमि बाय द पावर ऑफ हिज डिवोशन, पुलत्स्य मुनि बाय द पावर ऑफ गिरि गोवर्धन्स डिवोशन, पुलत्स्य मुनि हैड एन अर्ज फॉर यूरिनेशन। अभी पुलत्स्य मुनि बड़े योगी हैं, वो सभी वेगों पर नियंत्रण करते हैं, ही हैज कंट्रोल ओवर ऑल द अर्जेस, बट समहाउ व्हेन गिरिराज गोवर्धन वांटेड टू स्टे हियर ही कुड नॉट कंट्रोल हिज अर्ज ऑफ यूरिनेशन, अपना लघु शंका का वेग वो रोक नहीं पाए। इतना वेग हो गया कि वो तुमको ध्यान भी नहीं आया कि क्या करने वाले, तुरंत रखा गोवर्धन को और तुरंत भाग गए वो। और जब लघु शंका किया, अपने आप को रिलीव किया और लौट के आए और गिरिराज को उठाने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन गिरिराज को उठा नहीं पाए वो। तब उन्होंने गिरिराज को कहा चलो हमारे साथ, तो गिरिराज ने कहा मैंने आपको बताया था ना कि जहां पर भी आप रखेंगे वहां पर बैठ जाऊंगा मैं, ऊपर नहीं उठूंगा। तो पुलत्स्य मुनि को बहुत गुस्सा आया, तो उसने गिरिराज को शाप दिया कि आप रोज एक सरसों के दाने के साइज से जमीन में धस जाओगे, यू विल सिंक इन अर्थ डेली बाय द साइज ऑफ वन मस्टर्ड सीड। तो गिरिराज ने कहा कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड गेटिंग कर्स्ड, बट आई विल स्टे इन माय मास्टर्स प्लेस। इस तरह से इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि जो योगी अपने सारे वेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका है, वो भी भक्ति के प्रभाव से वेग के वश में आ जाता है, अपने वेग को रोक नहीं पाता है वो, क्योंकि गिरिराज की भक्ति पुलत्स्य मुनि के योग शक्ति से बहुत प्रभावी थी। इसलिए इस तरह से गिरिराज जी हिमालय से यहां पर आके बस गए। फिर त्रेतायुग आया, रामचंद्र जी ने अवतार लिया और रामचंद्र जी जो है सीता जी को लाने के लिए समुद्र में सेतु बना रहे थे, और समुद्र में सेतु बनाने के लिए 7 कोस की जगह बच गई थी। 100 योजन का पूरा ब्रिज था उनका, 100 योजन मतलब 800 मील का ब्रिज था। उस ब्रिज में 7 कोस बच गए थे, 7 कोस मतलब 14 मील। तो हनुमान जी सब जगह आकाश में उड़ रहे थे, देख रहे थे कौन सा अच्छा पर्वत है ताकि एक ही झटके में पूरा हो जाए काम, जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि सीता देवी ने वहां पर अल्टीमेट टाइम दिया था, 1 महीने के अंदर आप नहीं आते हो तो मैं अभी जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। तो वो दिन गिन रहे थे इतना दिन में ब्रिज बनेगा, उसके बाद ऊपर चलेंगे, फिर उसके बाद में पहुंचेंगे, फिर युद्ध होगा, फिर इतना दिन युद्ध लगेगा, 1 महीने के बाद अंदर रावण का वध नहीं हुआ तो सीता देवी आत्महत्या कर लेगी। तो बहुत जल्दी थी कि छोटे मोटे पत्थर डाल के ब्रिज को कंप्लीट करने के बदले में एक ही बड़ा पर्वत उठाया जाए और एक ही बार उसको बंद किया जाए। तो यहां पर आए और देखा इतना सुंदर पर्वत है, इतना बड़ा है, बिल्कुल 7 कोस का है, तो इसी को उठाया जाए। तो जैसे बाकी पर्वत उन्होंने बहुत आसानी से जमीन से उखाड़ के उठाए, ऐसे उन्होंने यहां पर भी कोशिश किया कि आसानी से उठाया जाए उसको, लेकिन गोवर्धन को हनुमान जी उठा नहीं पाए। तो वो सोचे कि चलो जाके देखते हैं कितना लंबा है कितना चौड़ा है, एक बार आइडिया आएगा कितना बल लगाना है। तो वो गोवर्धन ऐसे गोवर्धन है ऐसे, तो यहां से वहां उड़ने लगे देखने के लिए कि कहां तक है गोवर्धन। तो गोवर्धन जी वहां से पढ़ने लगे, जितना आगे जा रहे हैं हनुमान जी उतना गोवर्धन आगे जा रहे हैं। तो इस एंड में तो उनको एंड नहीं मिला उनका, तो इस एंड में चलने लगे, वो यहां से उड़ने लगे तो गोवर्धन यहां से बढ़ने लगे। तब हनुमान जी समझ गए कि कोई महान आत्मा है, कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये कोई महान भक्त है भगवान का। तो फिर हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे पर्वतराज, आप मुझे बताओ कि आप कौन हो, आपका परिचय दो, क्योंकि मैं भगवान रामचंद्र की सेवा में यहां पर आया हूं, इसलिए मैं आपको उठाने का प्रयास कर रहा था, आप बताइए आप कौन हो? तब वो कहते मैं गोवर्धन हूं, द्रोण का पुत्र। तो उन्होंने पूछा कि क्या काम है मेरे से आपको? तो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र की सीता देवी को रावण ने हर लिया है और उसको लाने के लिए समुद्र पर ब्रिज बन रहा है, और उस ब्रिज के लिए आखिरी हिस्सा बंद करने के लिए एक पर्वत की जरूरत है जिसके लिए आपका साइज बराबर है। तो तुरंत गिरिराज उठने लायक हो गए और तुरंत हनुमान ने उनको उठा लिया। तुरंत हनुमान जी के बल से वो तुरंत उठ गए, पहले वो हनुमान जी से उठे नहीं थे। जब उनकी इच्छा हुई हम उठ जाए, when he desired to be lifted, he could be lifted by हनुमान जी। सो जब वो हनुमान जी उसको लेकर आकाश में उड़ गए, तो आकाश में उड़ने के बाद में जब वो लंका की ओर जा ही रहे थे ब्रिज की ओर रामेश्वर के आगे, तो आकाश में ही आकाशवाणी हो गई कि ब्रिज का काम पूरा हो गया है, अभी कोई पर्वत की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी वापस जमीन पर आए, उन्होंने पर्वत को यहां पर रख दिया। जब पर्वत को यहां पर रखा तो गिरिराज गोवर्धन इतना रोए कि मैं दो युगों से तीन युगों से वेट कर रहा हूं कि प्रभु की कुछ सेवा मिले मुझे, और प्रभु की सेवा मिलने ही वाली थी लेकिन वो नहीं मिली। तो बड़े दुखी हुए, बहुत रोए। तो हनुमान जी उनका रोना देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, अरे ऐसा भी कोई भक्त है, भगवान की सेवा के लिए कितना तड़प रहा है। तो जाके उन्होंने भगवान से बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई, मैं वृंदावन में गया था, वहां पर मैंने पर्वत को उठाया, गोवर्धन नाम के पर्वत को, और जब आकाशवाणी हुई तो मैंने वापस रखा, तो इतना रोया कि मैं भी हैरान हो गया देख के। तो प्रभु रामचंद्र समझ गए कि हमारा भक्त ही, उन्होंने उनको संदेश भेजा कि इस अवतार में मैं आपकी सेवा नहीं ले पाया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं इस सेवा में आपको नहीं ले पाया इसलिए आप दुखी हो गए, इसलिए मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे अगले अवतार में मैं आऊंगा और मेरी अंतरंग लीला आपके आसपास करूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो। तो गोवर्धन ये भगवान का अति प्रिय भक्त है और इसके आसपास भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया है। यहां तक कि जैसे जमुना जी हैं, जैसे वैसे ही गोवर्धन है। जमुना जी ने भगवान के सारी लीलाओं का दर्शन किया है, बाल लीला का किया है, फ्रेंडशिप लीला का किया है, गोपियों के साथ लीला किया उसका भी दर्शन किया है, हाँ गौचरण का लीला दर्शन किया है, सब कुछ दर्शन किया है। वैसे ही गोवर्धन में भी गोवर्धन पर्वत ने भगवान की सब लीलाओं का दर्शन किया है। जब गोवर्धन पर भगवान आते थे तो गोवर्धन पर्वत जितना सख्त है, मतलब द माउंटेन इज वेरी हार्ड, बट भगवान के चरणों को आनंद देने के लिए गिरिराज गोवर्धन मक्खन की तरह मुलायम हुआ करते थे। अभी भी इतने आप हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा इतने भारी है, वो कड़क है, पत्थर है ना अल्टीमेटली। लेकिन भगवान की बंसुरी की आवाज सुन के और भगवान बलराम श्री कृष्ण के राधा रानी के चरण पड़ने से एकदम मुलायम हो जाते थे। इसलिए गिरिराज गोवर्धन पे कई जगह पर भगवान के चरणों के निशान हैं। भगवान जब भी बंसुरी बजाते हैं छठवा स्वर बजाते हैं, व्हेन ही प्लेज सिक्स्थ नोट, उस समय पत्थर पिघल जाता है। दुनिया में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम पत्थर को पिघला सकते हैं, सोने को पिघला सकते हैं, चांदी को पिघला सकते हैं, लोहे को पिघला सकते हैं। वी कैन मेक इट लिक्विड बाय हीट 3000 सेंटीग्रेड 4000 सेंटीग्रेड, लेकिन पत्थर को पिघलाने का कोई टेक्निक अभी तक नहीं आया है। ये टेक्निक केवल भगवान के पास है। भगवान जब मुरली बजाते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो ये गिरिराज गोवर्धन जो है भगवान की, जो सबसे बड़ी भक्त हैं वो है गोपियां, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। गोपियों ने जो त्याग किया है भगवान के लिए, उनके प्रेम के लिए जो भी सब कुछ छोड़ के उन्होंने भगवान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, इसलिए गोपियों का त्याग और गोपियों की भक्ति जो है उसकी कोई तुलना नहीं है। वो जो श्रेष्ठ भक्त है भगवान के गोपियां, वो भगवान की भक्त जो है गोपियां, वो गोवर्धन के विषय में क्या बोल रही है कि गोवर्धन ये हरिदास वर्य है, जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान की, वो स्वयं कह रही है कि गोवर्धन जो है वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं बोल रहा है, नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन इज टेलिंग दैट ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। भगवान की श्रेष्ठ भक्त जो है वो सर्टिफिकेट दे रही है कि गिरिराज गोवर्धन यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल, आप सबसे श्रेष्ठ भक्त हो भगवान के। तो गिरिराज को रामचंद्र जी के अवतार में सेवा प्राप्त नहीं हुई, इसलिए भगवान ने एक अपने कृष्ण के अवतार में उसको 7 दिन और 7 रात अपने सर पे उठा के रखा, इतना सम्मान दिया। 7 days 7 nights वॉज हेल्ड अबाउ द हेड ऑफ द लॉर्ड। तो गिरिराज का स्थान बहुत श्रेष्ठ है, इतना गिरिराज महत्वपूर्ण है कि राधा रानी ने कहा था कि गिरिराज गोवर्धन नहीं रहेंगे, जमुना जी नहीं रहेंगी, वृंदावन नहीं रहेगा तो मैं नहीं आऊंगी। जब उनको गारंटी हुआ कि ये आ गए हैं ऑलरेडी, तब उन्होंने आने का एक्सेप्ट किया कि मैं आऊंगी। तो सबसे पहली जो परिक्रमा है गोवर्धन की वो स्वयं भगवान ने लगाई। सबको कोई टायर्ड तो नहीं ना, कथा सुनने के लिए दिन तो नहीं आ रहे ना किसको? यस, अगर आप उत्साह में हो तो हरि बोल बोलो। थैंक यू। कम से कम हरि बोल बोलने से कुछ लोग जग गए होंगे। हरे कृष्णा। प्रसाद के बाद कथा करना बहुत मुश्किल काम है, प्रसाद के बाद कथा सुनना बहुत आसान है क्योंकि उसमें आप सो सकते हो, ये प्रसाद के बाद कथा करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब सबकी आंखें झुक जाती है प्रेम से, तब उसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो जब भगवान ने अपने पिताजी को इंद्र की पूजा करने को मना कर दिया और कहा कि आपको गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी है, वही हमारे भगवान है, हमारी गाय उन पर चरती है, हमारी गायों को ठंडा जल वहीं मिलता है, वहीं से फल प्राप्त होते हैं, हमारा जीवन गोवर्धन के ऊपर डिपेंड है, इंद्र के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंद्र की पूजा छोड़ दो और गोवर्धन की पूजा करो। तो पिताजी ने मान लिया और गोवर्धन की पूजा करने के लिए सब साधन जोड़ दिया, जो जोड़ दिया था इंद्र के लिए वही जोड़ दिया। और यहां से लेकर जहां हम बैठे हैं आज, आनियोर गांव तक कम से कम 4 किलोमीटर है यहां से, इसको कहते हैं अन्नकूट क्षेत्र। यहां से लेके आनियोर गांव तक 4 किलोमीटर तक सारे भोग लगाए गए थे, फ्रॉम हियर टू 4 किलोमीटर, और वो आज का 4 किलोमीटर है। गोवर्धन जी कम कम होते जा रहे ना, लेकिन उस समय कितने बड़े होंगे, द्वापर युग की बात कर रहा हूं मैं, 5025 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो एक एक दाना भी जोड़ देंगे ना आप, 5025 into 365, इज दैट राइट? 5025 साल into 365 into 1 mustard seed, फिर भी वो बड़े होंगे ना, कम से कम होंगे कुछ मीटर बड़े, तो उसका घेर भी बड़ा होगा कि नहीं। तो आज 4 किलोमीटर है, उस समय 10 किलोमीटर हो सकता है, आई डोंट नो। इतना सारा भोग लगाया कि अपने घर में जितना धान्य था वो सब खर्च किया, ये नहीं सोचा कि कल क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, जो भी था सब कुछ अर्पण कर दिया। वैसा नहीं कि एक प्लेट में सब्जी दिया, एक प्लेट में राइस दिया, पर्वत के समान, राइस का पर्वत, सब्जी का पर्वत, लड्डू के पर्वत, दही के मटके, हड्डा, हौद बनाया, हौद ऐसे जिसमें सब जूसेस और रस डाल दिया, और इतना सारा खाना जो है ना भगवान ने एक सेकंड में खा लिया, जैसे बच्चा खाता है ना कि गोटी ऐसे धराधर खा लिया उसको, और एक दो क्षण के अंदर बोले आनी और और दो, गिव मी मोर। तो विद्वासी बोले अभी कुछ नहीं है, सब तो खत्म हो गया, अभी घर में भी कुछ नहीं है। तो एक तुलसी का पत्ता अर्पण किया उन्होंने, अब भगवान संतुष्ट हो गए। और गोवर्धन का विशेषता यह कि भगवान उनके सामने खड़े थे, लेकिन भगवान गोवर्धन भी बन गए, वही भगवान छोटे से बालक है 7 वर्ष के, पब्लिक में खड़े हैं, और वही भगवान गोवर्धन के रूप में ऐसे विराट रूप धारण कर दिया उन्होंने, और ऐसे हाथ से पूरा खा लिया, संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने पूरा जो भोजन था वो पुनः प्रकट किया, ये केवल भगवान कर सकते हैं। अभी हमने जो खाया, हमने आपको बताया कि आप प्रकट करो, इफ आई टेल यू व्हाटएवर यू ईटन ब्रिंग इट बैक अगेन, सो व्हाट विल कम आउट? वेरी अबनॉक्शियस थिंग विल कम आउट. यू कांट गेट दाल सब्जी राइस सेपरेटली, रसगुल्ला सेपरेटली, खीर सेपरेटली. यू कांट सी, यू विल गेट ऑल दैट मिक्स्ड अप विद समथिंग मोर विच इज फाउल स्मेलिंग. बट कृष्ण भगवान ने सारा आइटम वैसे के वैसे प्रकट किया अपनी कृपा के साथ, दया के साथ, महाप्रसाद के साथ, अन्नकूट महाप्रसाद के साथ. अन्नकूट कहा क्यों कहा गया है? अन्न और कूट, कूट यानी पर्वत. अन्न का कूट मतलब अन्न का पर्वत, माउंटेन्स ऑफ फूड आइटम्स ग्रेन्स. दोबारा प्रकट किया पूरा और बता दिया कि कैसे कैसे किसको किसको बांटना है. पहले बूढ़ों को बांटना है, फिर बालकों को बांटना है, फिर स्त्रियों को बांटना है, फिर ब्राह्मणों को देना है, फिर सबको, सबको जानवरों को, सबको उन्होंने बांटने का प्लान बना दिया एकदम सिस्टमेटिकली. सब ने वो महाप्रसाद ग्रहण किया. ये सारी होने के बाद में, सॉरी, ये सब होने के पहले, पूजा होने के पहले, भोग लगाने के पहले, भगवान ने स्वयं ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन का परिक्रमा किया. सो गोवर्धन की परिक्रमा का जो विधि है वो सबसे पहले भगवान ने ब्रजवासियों के साथ में किया था. आज भी लोग परिक्रमा लगा, देखो यहाँ पर एकादशी से लेके पूर्णिमा तक परिक्रमा चलती है हर महीने में, और एकादशी से अमावस्या भी चलती है. हर महीने में दो बार 5-5 दिन 10 दिन की परिक्रमा चलती है. दिन रात लोग चलते रहते हैं, और जब कार्तिक महीना आता है तो बहुत लोग चलते हैं. गोवर्धन परिक्रमा का दिन आता है तो उसमें तो लाखों लोग चलते हैं दिन रात 24 आवर्स. गोवर्धन परिक्रमा का मतलब है गोवर्धन के चरणों की सेवा, पाद सेवा, यह इसका अर्थ है. जब हम परिक्रमा करते हैं तो इसका मतलब है उसके चरणों की सेवा कर रहे हैं. तो गोवर्धन परिक्रमा करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और साथ साथ कर्मों का नाश भी होता है. इसलिए कुछ लोग दंडवत प्रणाम परिक्रमा करते हैं. यू हैव सीन सम पीपल लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, पदम पदम यद विपतम नतेषाम. एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर एंड देयर इज फाइट इन द मटेरियल वर्ल्ड. सो कुछ लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं पूरे 22 किलोमीटर की. एक लंबी परिक्रमा है, एक छोटी परिक्रमा है, और एक मिनी परिक्रमा भी है. तो सबसे बड़ी परिक्रमा है वो 40 किलोमीटर की है. वो सनातन गोस्वामी किया करते थे रोज. सनातन गोस्वामी महाराज रोज वो परिक्रमा करते थे 40 किलोमीटर की. और एक जो अंदर की है वो 22 किलोमीटर की है, और उसको भी दो भाग करते हैं ब्रजवासी लोग. एक छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा बोलते हैं. जिस जगह हम बैठे हुए हैं उसका परिक्रमा करेंगे तो बड़ी परिक्रमा हो गई, छोटी पार्ट टू. और उससे भी छोटी कुसुम सरोवर के साइड में है, बीच में दान घाटी आती है ना, रास्ता आता है ना जहां पर हम टर्न करने की कोशिश किया गाड़ी नहीं आया, उसके उस तरफ जो गोवर्धन है उसका छोटी परिक्रमा बोलते हैं, और इस तरफ जो परिक्रमा है बड़ी परिक्रमा बोलते हैं. ये 4 कोस की है, वो 3 कोस की है, और कुल मिलकर 22 किलोमीटर की है. इस्कॉन के भक्त पूरी परिक्रमा करते हैं. सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा कर रहे थे तो अपनी जवान उम्र से 70 साल की उम्र तक रोज करते थे. 70 साल की उम्र में बहुत थक गए वो, फिर भी चल रहे हैं रोज, एवरी डे, आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स परिक्रमा चल रहे हैं. तो भगवान कृष्ण जो है ना एक बालक बनकर आए, ग्वाल बाल बनकर, और सनातन गोस्वामी को बताया कि प्लीज आप लोग क्यों चल रहे हो, इतने साल आप चले, आपने सब कुछ भक्ति परिपूर्ण कर लिया, अभी अभी और चलने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अभी आप आराम करो. तो सनातन जी ने कहा कि नहीं, मेरा व्रत है ये, जब तक शरीर है तब तक मैं व्रत करते रहूंगा. तो भगवान चले गए और बालक के रूप में आए थे, बालक के रूप में गोवर्धन पे गए, बंसी बजाया उन्होंने, तो बंसी बजाने के बाद में पत्थर पिघल गया. एक गाय भाग भाग के आई, वो भी खड़ी हो गई उस पत्थर पर, वो पत्थर का निशान भी आ गया उसके अंदर. जो डंडी लेके खड़े थे गाय हाँकने के लिए उसका भी निशान आ गया, एक पांव सीधा एक पांव आधा जमीन पे गए वैसे पिघलते पत्थर के अंदर. फिर बंसी बजाना बंद किया, पत्थर पिघलना बंद हो गया, पांव निकाल के यहां पर आ गए तो पत्थर का अंदर पैर का निशान बना. उस शिला को भगवान ने उठाया और फिर बालक का रूप लेके भाग भाग के आए। सनातन जी महाराज इस शिला का परिक्रमा करो। तो सनातन जी कहते कि अगर मुझे भगवान का आदेश हुआ कि परिक्रमा मत करो तो फिर मैं बंद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर चलो, मैं आपको ये शिला पहुंचाता हूं घर पे। तो जब वो घर पे चले गए और शिला रख दिया, बालक अदृश्य हो गया। तो सनातन जी को अनुभव हुआ, अरे ये तो भगवान ही थे स्वयं, मैं तो पहचानने को भूल गया। और मुझे बार बार जिद कर रहे थे कि आप इसकी परिक्रमा करो, गोवर्धन की परिक्रमा का बंद कर दो। तो उस दिन से उन्होंने उसको परिक्रमा करना बंद कर दिया और वो शिला जो थी उसका चार परिक्रमा करके रोज वो अपना परिक्रमा पूरा करते थे। क्योंकि भगवान ने कहा था कि पूरी गोवर्धन की परिक्रमा का बराबर ये शिला का चार परिक्रमा करेंगे तो उसका फल मिलेगा आपको। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी ने अपने ही घर पे, मतलब यहां से आगे जाएंगे उस तरफ तो मानसी गंगा आती है। मानसी गंगा कहानी आपको याद है ना, 16 फरवरी को शाम को बताई थी मैंने आपको। एनीबडी रिमेम्बर मानसी गंगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
नंद बाबा ने कथा सुनी थी ना गरुड़ की? हाँ हाँ हाँ। कि उन्होंने कहा था कि हमको अभी मां गंगा जी में स्नान करना है। तो भगवान ने मन से गंगा को प्रकट किया था ना, तो वो मानसी गंगा है। तो उसका जिक्र क्यों निकला था अभी बताओ? हाउ द रेफरेंस केम ऑफ मानसी गंगा? हाँ हाँ, क्योंकि मानसी गंगा के किनारे में सनातन गोस्वामी का निवास था और उसका नाम है चक्रेश्वर महादेव। उसकी कथा बताई थी मैंने उस दिन, पक्का? हरे कृष्ण। तो सनातन गोस्वामी चक्रेश्वर महादेव में रहते थे, उनकी कुटिया थी वहां पर। तो चक्रेश्वर महादेव मतलब कौन? पहले चक्रेश्वर मतलब कौन? चक्र ने भगवान का बहुत सेवा किया। कैसे? जब भगवान ने गिरिराज को उठाया और 7 दिन 7 रात ऊपर रखा अपने सर पे, तो चक्र को आदेश दिया था कि आप ऐसा गोल गोल घूमो मेरी गोवर्धन की ओर कि ऊपर से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नॉट वन ड्रॉप शुड फॉल डाउन, एवरी ड्रॉप शुड गेट इवेपोरेटेड बाय द हीट ऑफ यू चक्र। तो चक्र ने 7 दिन 7 रात पूरा राउंड लगाया कंप्लीट, और आकाश में से मूसलधार वर्षा हो रही थी लेकिन जमीन पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। तो ये सब लीला खत्म होने के बाद में चक्र ने भगवान को विनती किया कि मुझे यही सहारा दे दो, यही आसरा दे दो। तो भगवान ने मानसी गंगा के पास में उसको रहने का स्थान दिया। उस स्थान का नाम क्या है? चक्र तीर्थ, जहां पर चक्र ने शेल्टर लिया। तो उसी जगह पर महादेव जी भी आके उन्होंने अपना भी शेल्टर लिया। आपको ये सुबह कहानी बताई थी ना गोपेश्वर महादेव की, याद है ना कि नहीं याद है? तो भगवान ने शिव जी को आदेश दिया था कि आप हमारे ब्रज में आकर इम्पोर्टेंट स्थान पे रक्षा करने के लिए बैठ जाओ। तो वृंदावन में बैठ गए वो गोपेश्वर महादेव बनके। ये भी याद रखना है, बाद में बोलेंगे ये बोला नहीं। मथुरा में बस गए वो भूतेश्वर महादेव के रूप में, और गोवर्धन में बस गए चक्रेश्वर महादेव के रूप में, और नंदगांव में बस गए वो नंदीश्वर महादेव के रूप में, और काम्यवन में बस गए कामेश्वर महादेव के रूप में। तो चक्रेश्वर महादेव शिवजी महाराज गोवर्धन की रक्षा करने के लिए वहां बैठ गए। उसी के पास सनातन गोस्वामी का रहने की कुटिया थी, तो वहां पर वो भजन करते थे, लेखन करते थे, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। एक बार इतने त्रस्त हो गए, इतने परेशान हो गए, बहुत मच्छर हो गए वहां पर, बहुत ज्यादा मच्छर, बैठ नहीं पाए वहां पर वो। तो उन्होंने निश्चय किया कि अभी इस जगह को छोड़ना चाहिए, इतना तो भजन करना मुमकिन है ना लिखना मुमकिन है। तो वो जाने लगे तो शंकर जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, अरे इतना साथी संत का दर्शन मिल रहा था रोज, वो जा रहे छोड़ के हमारा स्थान। तो ब्राह्मण बनकर आए और सनातन जी को मिले और बोले, क्यों जा रहे हैं यहां से आप यही रहो, गिरिराज का आसरा अच्छा है। तो नहीं नहीं क्या करें, यहां पर भजन नहीं होता है, इतने मच्छर हो रहे हैं, बैठ नहीं सकता हूं यहां पर, इसलिए जा रहा हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक दिन और रुक जाओ, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो कह रहे एक दिन रुक जाओ। उन्होंने कहा कि एक दिन रुक जाओ, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। तो गोस्वामी ने कहा ठीक है रुक जाएंगे। अभी इसके आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, शंकर जी कहाँ गए पता है उसके बाद में? एनीबडी नोस? शंकर जी उस देवता के पास गए जो मच्छरों को कंट्रोल करता है। ही वेंट टू डेमीगॉड हु इज द कंट्रोल ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। और वो तो महादेव हैं, देवताओं के महादेव हैं। उन्हें आदेश दिया कि इस जगह पर एक मच्छर आना नहीं चाहिए, तो सनातन गोस्वामी चले जाएंगे। तो उस दिन से वहां पर मच्छर आना बंद। आज भी वहां पर मच्छर नहीं, अब जाके देख लो कि महादेव जी ने उस देवता को आदेश दिया है यहां पर कोई कीटक नहीं आना चाहिए। फिर सनातन जी वहीं रह गए और उनकी कुटिया के अंदर रहते थे और हर पूर्णिमा के दिन ब्रजवासियों को लेकर परिक्रमा करते थे। तो वो सब ब्रजवासियों ने उनको गुरु मान लिया अपना, और व्यास पूर्णिमा के दिन वो सब लोग आके उनको दंडवत प्रणाम करते थे। तो एक व्यास पूजा के दिन 70 साल के बाद की बात है ये, सब ब्रजवासी आए परिक्रमा देने के लिए। तो कुटिया में बैठे थे, गोस्वामी जी भजन कर रहे थे। बहुत लोगों ने आवाज दिया, गोस्वामी जी महाराज, सनातन जी गोस्वामी महाराज, हम लोग आ गए हैं, चलो परिक्रमा करने के लिए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ लोग अंदर गए और उनको जरा हाथ लगाया तो वो गिर गए तुरंत, क्योंकि वो अपना शरीर छोड़ चुके थे। तो ब्रजवासियों के अंदर इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने उनके मृत शरीर को लेकर पूरा परिक्रमा दिया व्यास पूर्णिमा के दिन। उस घटना की याद में आज भी व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, सब ब्रजवासी लोग गोस्वामी महाराज का प्रतिमा लेकर पूरी गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं व्यास पूर्णिमा के दिन। और वैसे भी पूर्णिमा के दिन परिक्रमा करने का महात्म्य क्यों है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण रास रचाते हैं, इसलिए उस दिन पूर्ण चंद्र की प्रकाश में परिक्रमा लगती है। ऐसे गोवर्धन का महात्म्य है। हरे कृष्णा।